نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآنی صورتوں کا نظم جلی آج ہم اس میں سورۃ النساء کو شروع کریں گے بک کے اعتبار سے پیج نمبر 87 ہے پچھلی صورتوں کی طرح سب سے پہلے اس صورت کا فلو چارٹ یعنی نظم جلی ہم دیکھیں گے کہ ترتیبی نقشہ ربط کیا ہے یعنی مختلف آیتوں میں ربط کیسے ہے یعنی میکرو سٹرکچر یعنی ایک آپ کہہ لیجئے کہ بڑے لیول پہ اگر ہم ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو پھر اس صورت میں کیا کچھ ہے ترتیب کے اعتبار سے کون سی ترتیب کتابی ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر کی صورت ہے 176 176 آیتیں ہیں مدنی صورت ہے اور اس کے 9 ٹاپک ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 9 مختلف پیراگراف ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو آپ کو بہت خوشی ہوگی پچھلی صورت میں ہم نے کتنے خوبصورت طریقے سے سورۃ آل عمران کا بنیادی تھیم دعوت دیکھا اور اس کے ساتھ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اسلام کو دنیا میں متعارف کروانا ہے اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے ساری دنیا بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور مسلمانوں کو نفاق سے بچ کر خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنے کا حکم اب آپ کو تو یہ ایک جملہ بولا میں نے پوز دینے کی کوشش کی ہے لیکن اگر آپ اس ایک جملے کو بائی پارٹ کر لینا تو سب سے پہلی بات ہے ساری دنیا کو دعوت اسلام دینی ہے پہلا کام امت مسلمہ نے جو کرنا ہے یہ لکھ لیں آپ دوسری بات مسلمانوں کو نفاق سے بچنا ہے کیا خوبصورت آیتیں ہیں صورت میں نفاق کی حقیقت کو سمجھنے کی تیسری چیز ساری دنیا کے مسلمانوں کو خالص توحید کو اپنانا ہے چوتھی بات خاندان سے لے کے ریاست تک ایک اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے اور ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرنی ہے یعنی گھروں میں سکون شروع ہوگا تو ریاست میں بھی آئے گا گویا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا ٹارگیٹ ہے اس صورت کا آپ محسوس کریں یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو صبح بلایا جائے گا اور کل آپ نے اسکول میں یہ کرنا ہے تو یہاں تو آپ کو اتنا بڑا کام دے دیا پھر دہرا دیتی ہوں ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دینی ہے میں نے ہم سب مسلمانوں نے نفاق سے بچنا ہے اور خاندان سے لے کے ریاست تک خالص توحید کے ساتھ اجتماعیت قائم کرنی ہے مجھے ایسے لگتا ہے اس سے خوبصورت کوئی گول ہی نہیں ہے زندگی کا اب اس کے جو مختلف 9 حصے ہیں اگر ان کو آیتوں کے ساتھ دیکھ لیں تو پہلا حصہ آیت 1 سے 43 1 to 43 ہے اس کا ٹاپک ہے حسن معاشرت کے احکام اسی کے اندر آپ دیکھیں گے نکاح کا پورا طریقہ اور ولی کی بات اور چار شادیوں کی بات اور شادی کے موقع پہ پسند ناپسند کی بات اور اس کے اندر یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہوں گے پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہے 44 سے 57 اہل کتاب کو دعوت اسلام 44 سے 57 اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے تیسرا پیراگراف ہے آیت 58 سے 59 صرف 2 آیتیں ہیں حکومت اور رعایا کے حقوق کسی ملک میں بھی سکون چین کب ہوگا جب سب کے حقوق دیے جائیں گے چوتھا ٹاپک آیت 60 سے 104 تک ہے منافقین اور جہاد یہ ٹاپک اس میں بہت سٹرونگ ہے اسی کے اوپر پارا پورا ہوتا ہے پانچواں پیراگراف ہے آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی حکمتیں یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کیوں نازل کیا چھٹا پیراگراف ہے آیت 116 سے 134 بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے مجادلہ یعنی دو قوموں کا دو گروہوں کا آپ کہہ لیں کہ بظاہر ایک دوسرے سے آمنا سامنا دکھے گا پھر اس کے بعد ساتواں پیراگراف ہے آیت 135 سے 152 نفاق سے بچ کر अदल और इंसाफ कायम करने का हुक्म। असल में एक मुस्लिम रियासत में क्या कुछ हो सकता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। और फिर उसके बाद आठवां हिस्सा है आयत 153 से 175, और वो क्या है, अहले किताब बिलखसूस ईसाइयों से मुजादिला। ठीक है, बहस मुबासा कह लीजिए। फिर सूरत की आखिरी आयत 176, एक आयत पूरे कानून वरासत को रिप्रेजेंट कर रही है अगर आप इस सूरत में देखें। हालांकि शुरू में कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन आखिरी आयत फिर भी विरासत से मुतल्लिक है, और ख़ास तौर पे उसमें एक ख़ास माहौल की विरासत के, यानी जहाँ के कलाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देखिए कि अब ये सारा कुछ एकदम तो नहीं समझ आता ना। अगर आप में से जो लोग नए हैं, इन बातों को कानों से टकराने दें और दुआ करें कि अल्लाह हमारे ऊपर वो वक्त ला के हम इन सारी चीज़ों को जज्ब करें। और जो लोग कई साल से, कई बार, कई रंग से कुरान पढ़ चुके हैं, वो इन आयतों को पढ़ते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम जमे हुए हैं, तभी हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आइए देखते हैं ज़माने नज़ूल, यानी सूरत निसा कब नाजिल हुई। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके लिए। वजह, जब तक ज़माने नज़ूल नहीं समझ आता, हम आयतों की मुराद और उसके अंदर से क्या निकालना है वो नहीं समझ सकेंगे। जंगे उहद शवाल 3 हिजरी और गजवा बनी मुस्तलक शाबान 6 हिजरी के दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों में नाजिल हुई, यानी पूरी सूरत एक साथ नहीं आई। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 3 साल के अरसे में मुख्तलिफ औकात में ये सूरत की आयात नाजिल हुई। जब गजवा उहद की शिकस्त के बाद बेवाओं और यतीमों के कई मसाइल उठ खड़े हुए, मसलन निकाह। ज़ाहिर है कि जब कुछ मर्द फौत हो गए तो उनकी बीवियों के दोबारा निकाह का मसला उठा। फिर इसी तरह से मेहर, जब निकाह बंधेंगे तब वो निकाह जो हैं वो इस्लामी रियासत में हो रहे हैं। बहुत सारों के निकाह पहले तो मक्का में हो चुके थे, तो मक्का में जो निकाह हुए थे वो अभी वो कवानीन वज़ा नहीं हुए थे। आप कह लें कि ऑपरेशन का दौर था, अभी तो मुसलमान मुश्किलों में थे, तो लिहाजा अब हक मेहर क्या मुकर्रर किया जाए या उसकी क्या हैसियत है। फिर तीसरी चीज़ विरासत। ज़ाहिर है जब सहाबा कराम में से 70 लोग शहीद हो गए तो उनका छोड़ा हुआ माल, उसका क्या मामला होगा। दौरे जाहिलियत में इसमें बहुत कमी बेशियाँ थीं, तो लिहाजा ये सारे मसाइल पैदा हुए। और साथ ही साथ एक जुमला लिख लें, जब इस्लाम पर कोई ओहद टूटेगी तो मुनाफ़क़त पैदा ज़रूर होती है। तो अगली चीज़ फिर क्या है कि मुनाफिकीन की हिम्मतें बढ़ गईं। इस्लाम को जब फतूहात मिलती हैं, जब कामयाबियाँ होती हैं ना, तो बहुत सारे लोग छुपे रहते हैं, उनका निफाक जाहिर नहीं होता। कामयाबियों की छतरी के नीचे निफाक छुप जाता है। लेकिन जब नाकामियाँ होने लगती हैं, अबतरियाँ मचने लगती हैं, तो फिर मुनाफिकीन की हिम्मतें बढ़ने लगती हैं। और वो क्या है, आइए देखते हैं। ज़माने नज़ूल सूरत निसा का ज़्यादातर हिस्सा जंगे उहद के बाद गालिबन 3 हिजरी के आखिर में या 4 हिजरी में नाजिल हुआ। बाज़ आयात जंगे उहद शवाल 3 हिजरी और गजवा बनी मुस्तलक शाबान 6 हिजरी के दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों में नाजिल हुई। जब जंगे उहद में कई मुसलमानों की शहादत के बाद बेवाओं और यतीमों के कई मसाइल, जिसमें निकाह, मेहर और विरासत वगैरह शामिल है, ये जो बशमूल लफ्ज़ है ना, इसका मानी के शामिल है, और मुनाफिकीन की हिम्मतें बढ़ गई थी। थोड़ा सा इसका मज़ीद बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। यहूदी कबीले बनी नज़ीर की जिलावतनी, जो रबीउल अव्वल 4 हिजरी से हुई, उससे पहले यहूदी और मुनाफिकीन का बोगस और अदावत खुलकर सामने आ गया था। इस मौके पर नोज़ायद, नोज़ायद किसको कहते हैं, न्यू बोर्न, नई नई बनी हुई अभी रियासत, नौज़ायद इस्लामी मुमलिकत के इस्तेहकाम, इस्तेहकाम किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, इस्लामी मुमलिकत के इस्तेहकाम के लिए मुनाफिकीन की सरगर्मियों का नोटिस लेना ज़रूरी था, जो इस्लामी रियासत को खोखला कर देती हैं। चुनाचे यहाँ इस सूरत में इस्लाम के निज़ाम मुआशरत, निज़ाम हकूमत और निज़ाम अदल व क़िस्त, क़िस्त किसको कहते हैं, इंसाफ को, की वजाहत की गई है। सलातुल खौफ के अहकाम हैं, जो आयत नंबर 102 में हम पढ़ेंगे। गजवा ज़ातुर्रिक़ा का जिक्र है, 4 हिजरी के मौके पर नाजिल हुए। और अहकाम तयम्मुम आयत 43 में है, जो गजवा बनू मुस्तलक के मौके पर शाबान 6 हिजरी में नाजिल हुए। यहाँ एक छोटी सी चीज़ ज़रूर सोचिए, नबी सल्लम की ज़िंदगी में एक तरफ जंगें चल रही हैं, आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ वही का सिलसिला जारी है। आज आप ज़रा इन दोनों को जोड़िए, आज वही नहीं तो नहीं आती, तो वही क्या है? आपका मेरा कुरान क्लास में आना, अमल की बात लेके। ज़िंदगी में से बड़ी जंगें भी लगी हो ना, तो वही का सिलसिला अगर आपके साथ लगा रहे तो आप उन सारी चीज़ों से निकल जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं अभी मेरे हालात नहीं ठीक, अभी मैं थोड़े दिन की छुट्टी ले लूं, तो फिर आप उन जंगों में हारेंगे। ये लिख लें अपने लिए, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में ये कुरान हबलुल मतीन है। माँ नहीं पास होती, ये किताब पास होती है, ये आपको थाम लेती है। शौहर पास नहीं है, ये किताब थाम लेगी। और आगे आप पढ़ेंगे नहीं, जंगों के एंड पे अल्लाह के नबी की शादियां भी हो रही हैं। अक्सर शादियों में किसी ना किसी जंग का एंड शामिल है। खुशी हो, गम हो, जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, आप इस किताब के साथ जुड़े रहें। अहकामात भी उसी में नाजिल हो रहे हैं। मल्टी टास्क थे सहाबे कराम, और अल्लाह के नबी को ये नहीं कहा अल्लाह के नबी जरा सुकून से बैठ जाएं, फिर बैठेंगे, फिर कुरान उतरेगा, फिर पढ़ेंगे। तो जिंदगी में वही शख्स कामयाब है। अपने हर रूप को पहचाने, अपनी हर चीज के ऊपर आप लोग इस चीज को अपने आप को मतमईन कर लीजिए कि मैं किस तरीके से अमल कर सकता हूँ और कैसे करना है। और अल्लाह ताला से ये बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन सारी चीज़ों में खैर रखे। और सीखने की बातें यही होती हैं। अब थोड़ी सी खसूसियात, जैसे किसी से भी प्यार होता है तो उसकी खूबियाँ जानना चाहता है, तो साबिका दोनों सूरतों की तरह सूरत निसा में भी अहले किताब को इस्लाम की दावत देने की हिदायत की गई है। अलबत्त यहाँ ये इशारा भी मिलता है कि अहले किताब को इस्लाम की दावत एक इज्तमाई रियासती फरीजा भी है। यहाँ फिर नोट कीजिए एक बात, सूरत अल फातिहा में एहदिना सिरात अल मुस्तकीम, वहाँ से लेके आज तक सूरत बकरा, सूरत आल इमरान, अब सूरत निसा, आपको वही कंटिन्यूशन चल रही है। खुद हिदायत पे रहना चाहते हो तो दूसरों को भी बुला लो। और आप देखिए ये तीनों सूरतें अहले किताब से जुड़ी हुई हैं, और ख़ास तौर पर सूरत मायदा में आप बहुत सारी आयतें आज के क्रिश्चियन क्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक रब्त होता है कि इन आयतों को पढ़ के हम मुसलमानों को आज के दौर में यहूद और नसारा के साथ किस तरीके से डील करना है, कैसे मामला करना है, उसके इशारे मिलते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें इसमें सिखा दिया कि तुम अपने हिस्से का काम करते रहो। सूरत निसा का किताबी रब्त, मेरा दिल चाह रहा है कि हम पीछे का भी दोहरा लें। सबसे पहली सूरत फातिहा थी, किससे उसका रब था? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। हाँ, सूरत फातिहा में क्या आ गया? रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी सूरत नास का रब्त सूरत फातिहा से हो गया। सूरत फातिहा से सूरत बकरा का रब्त क्या था? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, हुदल लिल मुत्तकीन। चलिए सूरत बकरा और सूरत आले इमरान का रब्त किधर था? आखिरी आयतें क्या थी सूरत बकरा की? फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, इस्तकामत मांगी थी और ख़ास तौर पे उसमें मुसलमानों को गलबा दिलवाना था। तो सूरत आले इमरान के शुरू में क्या था? रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, यानी अहले किताब के साथ मुजादले से शुरू हो गई थी बात। अब देखते हैं सूरत निसा का रब्त सूरत आले इमरान से कैसे जुड़ता है। सूरत आले इमरान के दूसरे हिस्से में नई उम्मत की तंजीम और इत्तेहाद की दावतें दी गई थी। ऐसी है ना, कितने हिस्से थे सूरत आले इमरान के? टेस्ट ले लो, बस इस बुक का अगर आपसे जुबानी टेस्ट ले लिया जाए तो आप आलिमा की डिग्री ले सकते हैं। करना है, 1 साल तैयारी कर ले। आपको तो मदरसों में आप याददाश्त का भी इम्तिहान होता है, आयतें हदीसें याद कराई जाती हैं, तो हर जगह ओपन बुक तो नहीं होती ना। सूरत आले इमरान के 4 हिस्से थे। दूसरे हिस्से में नई उम्मत की तंजीम और इत्तेहाद की हिदायत की गई थी। यहाँ सूरत निसा में इसकी मजीद वजाहत है कि ये तंजीम यानी ऑर्गेनाइज करना सिर्फ मैदान जिहाद तक महदूद नहीं है, बल्कि खानदान से लेकर रियासती इदारों तक वसी होगी। यहाँ सूरत निसा में इस्लामी हुकूमत के क्याम की तरफ इशारा है। अगली सूरत अलमायदा में इस्लामी अदालतों के क्याम की तरफ इशारा है, ताकि इस्लाम के फौजदारी निज़ाम पर अमल दरामत हो सके। बात समझ रहे हैं? यानी आप बिल्कुल इस तरह समझें कि मदीना एक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे आप सोचते हैं 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान एक बिल्कुल एक बुनियादी लेवल पे था, फिर 48 में कुछ और अच्छा हुआ होगा, 49 में कुछ और, 50 में ऐसे ही ना, बिल्कुल यहाँ यही समझें। ये सूरतें उसी तरतीब के साथ चल रही हैं। यदि आप कह लें कि इब्तदाई दौर में कोई भी काम बहुत बेसिक्स पे होता है, फिर वक्त के साथ साथ उसमें पुख्तगी आ जाती है, तो सूरत निसा आपको मुझे इस्लामी हुकूमत के क़याम की बुनियादें सिखाती है। और ये सबसे बढ़कर आप देखिए, सूरत में अतीउर रसूल की बहुत बात आएगी। अभी तो हम इसकी वजाहतें कर रहे हैं ना, लेकिन इस सूरत में ये मैसेज दे दिया गया है। आज भी किसी मुल्क को इस्लाम के नाम पे स्ट्रॉन्ग सेटअप करना है, तो अल्लाह के नबी की सुन्नतें और आपकी मोहब्बत और आपके साथ ताल्लुक और आपकी अमली चीज़ों को लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अहम कुलीदी अल्फाज देख लेते हैं, यानी की पॉइंट्स ऑफ दी सूरह। सूरत निसा में मेहर के अहकाम आते हैं। मेहर किसको कहते हैं? मेहर किसको कहते हैं? हक मेहर किसको कहते हैं? शादी के मौके पे जो दूल्हा देता है दुल्हन को, मेहर क्या है? और क्या है? तोहफा है। और क्या है? मेहर क्या होती है? ये मेहरबानी क्या होती है? मेहर जो है ना, ये मेहरबानी है, ये मोहब्बत है, एक टोकन ऑफ लव है एक मर्द की तरफ से एक औरत के नाम पे। चलिए, इस सूरत में मेहर के अहकाम बार बार आए हैं, इससे इसकी फर्जियत और अहमियत मालूम होती है। हालांकि जिक्र सूरह बकरा में भी है, लेकिन इस सूरत में ज्यादा इसका जिक्र है। मेहर के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मसलन सदुकात। अब देखिए, सदु कहेंगे तो बात बनेगी, सदकात नहीं है, सदुकात। आयत 4 में इसको कहा गया, क्यों भाई सदुका क्यों कहते हैं हक मेहर को? एक मर्द की सदाकत की दलील है। आई एम सिंसियर, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। यानी एक मर्द का अपनी बीवी के मामले में सीरियस होना, ये नहीं कि टाइम पास मैरिज है, ये नहीं है कि वक्त गुजार रहे हैं, वीजा लेने के लिए कर रहे हैं, किसी मुल्क में एंटर होने के लिए कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई इस बात की कि सारी जिंदगी अब मैं इसकी टेक केयर करूंगा। ठीक है, फिर दूसरा इसके लिए लफ्ज आया फरीदा, क्यों? फर्ज है। आयत 24 में ये लफ्ज आया। फिर इस तरह इसके लिए लफ्ज है उजूर। उजूर क्या होता है? अजर। अजर किसको कहते हैं? मुआवजा। तो उजूर क्यों हुआ? के किस्म का औरत की जो कुर्बानी है, एक औरत अपने मर्द को बाप बनाती है, उसकी नस्ल की परवरिश करती है, तो ये उजूर का लफ्ज उस सेंस में समझ आता है। आयत 10 में ये इस्तेमाल होता है। फिर किंतार का लफ्ज भी आता है कि अगर खजाना भी दे चुके हो तो तलाक की सूरत में वापस नहीं ले सकते, तो किंतार और खजाना भी मेहर में दिया जाए तो वापस नहीं लिया जाता। किंतार लफ्ज से क्या पता चलता है? कि शरई हक मेहर 32 रुपए नहीं है। किंतार कहते हैं हीप ऑफ द मनी, बड़ा खजाना, पहाड़ जितना। यानी हक मेहर में जितना मर्जी माल कोई दे 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 सकता है। दूसरा जो लफ्ज है सूरत निसा में वो है ताहूत। ताहूत से मुराद गैर इस्लामी अदालतें और नजरिया जंग है। क्या आज के दौर में है ये ताहूत? पूरी दुनिया इस ताहूत के हाथ में है। ताहूत के सिलसिले में दो बातें बयान हुई हैं। ताहूत के पास तहकीम, तहकीम क्या होता है? हुक्म लेने के लिए, यानी अपना फैसला उसे करवाने के लिए। अपने मुकदमात नहीं ले जाए जा सकते क्योंकि कुरान नाजिल हो चुका है, अब वही की रोशनी में फैसले होंगे। बात समझ रहे? आज हम मुसलमान मुल्कों में रहते हुए भी बाय लॉ कुछ मामलात में ताहूती अहकामात को मानने पे मजबूर हैं। जब मुसलमान एक मुल्क हासिल कर ले, उसके बाद उसको गैर इस्लामी फैसले नहीं चाहिए। यहाँ तागूत से मुराद गैर इस्लामी अदालतें हैं। अब सवाल है आपके जहन में, हो सकता है गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हुए फिर हम क्या करें? तलाक की सूरत में बच्चे किधर जाएंगे? शौहर फौत हो गया, मियाँ बीवी चले गए, उनका माल किधर जाएगा? अब आप कहते हैं वो तो मुल्क का कानून है, तो क्यों नहीं बदला? मुसलमानों ने कोशिश नहीं की। अगर हम आते ही ये शर्त रख दें कि हम तुम्हारे काम करेंगे, लेकिन हमारी जात पे, सिर्फ मुसलमानों पे मौत, जिंदगी, शादी, ब्याह पर इस्लामी अहकाम लगेंगे, उनको कोई इतराज ही नहीं है। देखिए, किसी मुल्क का डिसिप्लिन ही तो कायम रखना होता है, उनको क्या लगे? तलाक के बाद मियाँ के पास क्या गया, बीवी के पास क्या गया, बच्चे किधर उधर के, उनको क्या लगे? उन्होंने एक डिसिप्लिन करना है। बड़े से बड़े मुल्क का नाम ले लें, उसमें दो शिकें हो सकती हैं, फॉर मुस्लिम्स, फॉर नॉन मुस्लिम, दैट्स इट। सीधी सी बात है, मुस्लिम्स के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है नॉन मुस्लिम से, बाकी सब में कॉमन है, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने इसकी कभी कोशिश ही नहीं की, और इस वजह से आज तक हम परेशान हैं कि हमारे बाद पीछे क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए, मुसलमान जहां रहे, और बिलीव मी, इस्लाम के कवानीन जब वहां लागू होंगे ना, तो उसको देखकर, उसकी खूबसूरती देख के बाकी गैर मुस्लिम भी कहेंगे कि हमें यही दे दो। बिल्कुल यही बात मदीना में हुई थी। अल्लाह के नबी ने मदीना में आकर दो अदालतें कायम की थी, एक फॉर मुस्लिम्स और एक फॉर ज्यूस। मुस्लिम्स के सरबरा नबी सल्लम थे, आपकी गैर मौजूदगी में हजरत उमर उसके नायब थे, आपकी जगह वो फैसले करते थे। दूसरी तरफ ज्यूस का जो इदारा था उसका काब बिन अशरफ जो था वो मालिक था या वो उसका लीडर था। तो अल्लाह के नबी ने ये करके दिखा दिया कि एक मुसलमान मुल्क में नॉन मुस्लिम रह सकते हैं, अपने रिलीजियस फ्रीडम के साथ रह सकते हैं। आज हम मुसलमान सिर्फ ये बात ले जाए ना, ये जो मैं आपको सच बताऊं बात दूर ना चली जाए, अगर आज हम मुसलमान सिर्फ अपने इस हक को लेने पे कामयाब होते ना, तो ये हर मुल्क से जो कुछ अरसे बाद आपको धमकियां मिलती हैं, बैन द निकाब, बैन द हिजाब, बैन द देश, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने बायलॉ को दिखा दिया। तो हमारी बेअमली ने आज कितने मुसलमानों की जिंदगी अजीरन की हुई है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। दूसरी बात ये बताई गई कि मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और काफिर तागूत के लिए, यहाँ तागूत से मुराद वो नजरिया है जिसके मातहत काफिर लीडर अपनी कौम को जंग के लिए उभारते हैं। आयत 76 में ये चीज़ हम देखेंगे। पहली बात जो थी गैर इस्लामी अदालतों की आयत 60 में थी। इस बात से क्या समझ आया है कि मुसलमान अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और काफिर तागूत के लिए? मुराद ये कि आज के दौर में जितनी भी एंटी मुस्लिम तहरीकें हैं उसका सदबाब ज़रूरी है। फिर तीसरा लफ्ज़ जो सूरत निसा में आया है पाक दामनी के लिए मुहसिनीन और मुहसनात का, मर्दों और औरतों यानी दोनों को हुक्म दिया गया कि वो पाक दामनी इख्तियार करें। हिसन या कह लीजिए मुहसन, महफूज, किलाबंद और पाक दामन रहें। चुनाचे मर्दों के लिए मुहसिनीन गैर मुसाफहीन और औरतों के लिए मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिजात अखदान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आयत 24-25 में। बस आप ये समझ लीजिए कि इन दो लफ्जों ने एक शादीशुदा कपल को यह एहसास दिला दिया कि अब तुम इधर उधर नजरें नहीं उठा सकते, तुम्हारी सारी हमदर्दियां और सारी मोहब्बतें एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे सूरत निसा का नज़्म जली और इसकी खसूसियात। ये क्या चीज़ है? पहले पेज पे जो हमने फ्लो चार्ट देखा है उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो आप पढ़ चुके हैं उधर, यहाँ थोड़ी सी उसमें डिटेल है, गो थ्रू कर लेते हैं। सूरत निसा 9 पैराग्राफों पर मुश्तमिल है, यानी 9 डिफरेंट टॉपिक हैं इसके। इस सूरत के नज्म की खसूसियत यह है कि सूरत में पहले, तीसरे और 9वें पैराग्राफ पर मुश्तमिल आयली, आयली किसको कहते हैं? घरेलू, अहलो याल, बीवी बच्चे, यानी घरेलू किस्म की चीज़ें, माशर्ती, माशरे में, सोशल, सियासी, यानी सियासी को क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स, और अदालती, अदालत क्या होती है? कोर्ट्स जो होती हैं, अदालती अहकाम के दरमियान। दूसरे, छठे और 8वें पैराग्राफ में बनी इस्माइल और बनी इसराइल दोनों को इस्लाम की दावत दी गई। अब यहाँ रुकिए जरा, आप कह रहे हैं कि पहले, तीसरे और 9वें पैराग्राफ का टॉपिक एक ही है, ये कह रहे हैं ना, और दूसरे, छठे और 8वें का एक है, तो क्यों ना अल्लाह ताला ने इसको सारा इकट्ठा कर दिया और अगले को इकट्ठा कर दिया? समझ आ रही? सॉर्ट आउट कर दिया था? नहीं, यही इस्लाम की खूबी है। अब देखिए, आज दुनिया में कोई भी लॉ की बुक पढ़ेंगे ना, बोरिंग, इतनी मुश्किल टर्म्स। इस्लाम क्या करता है? एक कानून देता है, फिर दिल सोजी, फिर उसमें से मॉरल लेसन, सख्त आयतें अब विरासत की पढ़ लेते हैं, उसके साथ ही तौबा की बातें, साथ दिल सोजी। तो ये किस्म का मिक्सचर ऐसी है जैसे आप कहना चाहिए कि मिक्स एंड मैच। आप ये लिख सकते हैं इसके आगे कि ये मिक्स एंड मैच आयतें पढ़ने और सुनने वाले का जज्ब बढ़ाती हैं और दिलचस्पी कायम रहती है। फिर मजबूत इज्तमाईयत यानी इस्लामी रियासत के क्याम और इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी दुश्मनों यानी मुनाफिकीन के बारे में अहकाम भी 4वें और 7वें पैराग्राफ में दिए गए। और याद रखे, जहां भी इस्लामी रियासत का इस्तेहकाम चलता जाएगा, साथ ही साथ कुछ लोग जिनके मुफादात पे चोट पड़ती है वो सरगर्मी अमल हो जाते हैं। सिर्फ समझाने के लिए कह देती हूँ, आप देखिए कि माशाल्लाह 47 से आज 17 ले लीजिए, 60 साल हो गए ना पाकिस्तान को बने हुए। अल्लाह इसको क्यामत तक सलामत रखे, दुश्मनों से बचाए, शर से बचाए, अल्लाह इस इधर को इस्लाम का गढ़ बना दे, इसी को मदीना बना दे। अब आप देखिए कि मुसलमानों को 60 साल से जायद हो गए इस मुल्क को बनाए हुए, आज भी जिस हुक्मरान ने आके यहाँ इस्लामी शरीयत के नफाज की बात की, कौन मुखालफत करता है? अमरीका, चाइना, फलां, वो बाद में अपने मुल्क की डेमोक्रेसी, अपने मुल्क के वो ब्यूरोक्रेट्स, क्यों? उनको पता है कि सारी चोटें हम पे पड़नी है। आज अगर हुक्मरानों का एहतसाब हो गया तो मुश्किल पड़ जाएगी। वो कहते हैं सोए रहो सोए रहो, जब कोई ऐसी बात करते हैं उसको कोई कह लीजिए साजिश का नाम देते हैं और उसको चुप करा देते हैं। लिहाजा मुसलमान अगर खुद अपने दीन पे सच्चे हो जाएं तो किसी को बाहर जुरत नहीं बढ़ती कि वो किसी काम में बोल सके। अब जो 9 हिस्से थे उसकी मुख्तसर वजाहत आयत 1 से 43 पहले पैराग्राफ में कई माशरती अहकाम दिए गए जिनमें कानून वरासत भी शामिल है। पहली आयत में इज्तमाही माशरती जिंदगी की तमहीद है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, वो आदम और हवा की औलाद ही हैं। निकाह के नतीजे में ही रिश्ते पैदा होते हैं। क्या आज वेस्टर्न स्टाइल में ऐसी है? नो, आउट ऑफ वेडलॉक। वो कहते हैं बच्चे पैदा हो भी जाएं शादी नहीं करनी, पाबंदियां लगेंगी। और आज किसकी सजा कौन भुगत रहा? औरत भुगत रही है। आप जाके इस मुल्क के जरा लीजिए उनसे फिगर्स। अगर बच्चे हैं भी ना, गोरों की बात कर रही हूँ, तो बिलीव मी 80% बच्चों को सिर्फ माँ ही देख रही हैं, या बेचारा नौब देख रहा है। वो भंवरे आए रस चूसा और चले गए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई देता नहीं है। लेकिन इतना डरा दिया लोगों को निकाह के लफ्ज से कि पता नहीं पाँव में बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। लोग डरे हुए शादी करने से। साथ रहते हैं 10 10 साल तक, कभी इतफाकन या ख्वाहिश या टेस्ट चेंज करने के लिए एक बच्चा पैदा हो भी जाए इट्स ओके। ख्वाहिश ही नहीं रही, खानदान बनाने के लिए शादियां नहीं हो रही, सिर्फ अपने जिस्म के तकाजों को पूरा करने के लिए। साथ रहने को जब कोई पसंद करे तो याद रखिए उस सोसाइटी में सबसे बड़ा क्राइसिस आता है वो फैमिली बॉन्ड टूटता है। और इन मुल्कों में आप ये देख सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि खानदान के नतीजे में जैसे रिश्ते पैदा होते हैं इसी तरह खानदान बनता है। और खानदान ही माशरे की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट। बुनियादी इकाई किसको कहते हैं? जैसे पाकिस्तान में दीवार किस चीज से बनती है? ईंट से बनती है ना, तो ईंट वो यूनिट है जिसने दीवार बनाई। तो हर फैमिली, जैसे मेरा घर, आपका घर, आपका जितने आप सब बैठे हैं, हम सब ईंटें हैं, हमारी ईंटें सीधी हैं, हमारे घरों में सुकून है, हम एक दूसरे के हकूक को ले रहे हैं, पूरे माशरे की दीवार खुद ही ठीक हो जाएगी। इस पे मैरिड लाइफ ए टू जी में मैंने इसी मिसाल से वो सेशन शुरू किया था कि फैमिली यूनिट इज अ बेसिक यूनिट, तो लिहाजा उसके बाद ही तो बाकी चीजों में इस्तेहकाम आएगा ना। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह से डरते हुए रिश्तों को कायम दायम रखना चाहिए। पहली आयत में कितनी दफा तकवा का जिक्र है? या युहन्ना सो बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उसमें 2 दफा तकवा का जिक्र है। इंसानी रिश्ते निभ ही नहीं सकते जब तक अल्लाह का खौफ ना हो। एक खौफ होता है अल्लाह और बंदे के बीच में, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और एक खौफ होता है हकूकुल इबाद को पूरा करने का, इंसान को जो उसकी फिक्र हो कि मैं किसी की हक तलफी ना कर दूं। दूसरा हिस्सा देखिए, इसके बाद यतामा और बेवाओं के हकूक बयान किए गए। यतीम का माल खाना हराम है। दो दो तीन तीन चार चार औरतों से निकाह की इजाजत दी गई, बशर्ते कि ये इंसाफ के साथ किया जाए। यतीमों के अमवाल अक्लमंद अफराद के जेरे तसरुफ हों। बालिग होने पर यतीमों का माल इन्हें वापस कर दिया जाए। यतीमों का माल खाने वाले दोजख की आग में जलेंगे। खुश दिली से मेहर अदा करने का हुक्म दिया गया। वातुन निसा सदुकातिहिन्न नहला, आयत 4 में। आयत 12 से 14, 12 to 14 में विरासत के अहकाम यानी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बयान किए गए। इन अहकाम को हदूदुल्लाह कहा गया यानी अल्लाह बाउंड्रीज, जिनकी खिलाफ वर्जी की सजा दोजख है, आयत 14। आज उम्मत में से कितनों को हुकूक विरासत के अहकाम आते हैं? हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है, कल परसों मैं पढ़ रही थी, इन्हीं 2 3 दिनों में किसी ऑनलाइन क्लास का था, कि वो कहती है मैंने जिंदगी में पहली दफा विरासत के बारे में पढ़ा और अल्लाह उसको इल्मुल फराइज कह रहा है। देखिए जहालत, इल्मुल फराइज जो फर्ज है एक उम्मत को सीखना, वो कहती है मैंने इस उम्र में पहली दफा पढ़ा। उनको पता ही नहीं था कि ये भी कोई हुक्म होता है। आज किसको पता है कैसे लोग हक मारते हैं बहनों के और भाइयों के, और अल्लाह की बना, अल्लाह की बना। फिर आप देखिए कि 2/3 सिर्फ 2 से ज्यादा बेटियों, सगी हैं या मां शरीक हैं या सौतेली बहनें हैं, इनका है। जब असूल और फरू ना, असूल कौन होते हैं? नीचे बाप, दादा, परदादा। और फरू कौन है? ऊपर, फरा कहते हैं ब्रांच को। बेटा, नवासा, पोता, बाप, बेटे के बच्चे, बेटी के बच्चे, और सगे भाई भी ना हो। 1/3 माँ का हिस्सा है जब औलाद ना हो और 2 या ज्यादा बहन भाई ना हो। नीस माँ शरीक सौतेले भाइयों का भी हिस्सा है जब बाप, दादा और औलाद ना हो। 1/6 वालदेन का हिस्सा है जब औलाद हो। माँ का हिस्सा है जब भाई मौजूद हो। माँ शरीक सौतेले भाई बहनों के लिए जब मैयत के वालदेन भी ना हो और औलाद भी ना हो। 1/2 यानी हाफ, आधा हिस्सा सिर्फ एक बेटी के लिए और बीवी के बेऔलाद शौहर के लिए। हम क्या कहते हैं, लाखों की अकलौती वारिस। अकलौती कभी पूरी वारिस नहीं होती। बेटी को बाप के हिस्से या माँ से जो मैक्सिमम मिलता है वो हाफ मिलता है। 1/4 हिस्सा औलाद वाली बीवी के शौहर के लिए और बे औलाद शौहर की बीवी के लिए है। 1/8 हिस्सा औलाद वाली बेवा के लिए है। विरासत के तमाम हिस्से वसीयत और दैन, दैन किसको कहते हैं, कर्ज, यानी कर्ज को अदा करने के बाद तकसीम किए जाएंगे। इसको मैंने सारा एक साथ पढ़ दिया है। मैं आपको दावत दूंगी, लिख लें अपने कामों में। अगर आपने नहीं डिटेल से भी तफसीर पढ़ी तो कम अज कम इन आयतों की तफसीर जाके आप सवीरुल जन्ना में, हमने बहुत डिटेल से की हुई, किसी सेट से किसी की भी सुन लें, आपको सारे के सारे हिस्से समझ आ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। ये जिंदगी और मौत के मामले हैं और हम कितने गाफिल होकर इनसे बैठे हुए। फिर इसी तरह चौथी चीज़ बदकारी और फहाशी की सजाएं बताएंगी और कबूलियत तौबा के अहकाम दिए गए। और आयत 15 मनसूख है। 15 नंबर आयत क्यों मनसूख है? क्योंकि पहले विरासत के अहकाम नहीं थे तो ये कह दिया कि अच्छा, मरने के बाद जो भी तुम्हारे ताल्लुकात हैं, जिनसे वादे किए हैं, उनको दे दो। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें मनसूख हो गई। सूरत नूर की आयत इसकी नासिख है। नासिख मीन मनसूख करने वाली। गैर शादीशुदा जानिया के लिए 100 कोड़े हैं और शादीशुदा के लिए रजम है। अब बदकार औरत को मौत तक रोका नहीं जा सकेगा, यानी आप हुक्म चेंज हो गए। फिर पांचवी चीज, हुस्ने माशरत के असूल बयान किए गए, जिनमें बीवियों के हकूक, महर की फर्जियत और मुहर्रमात निकाह की तफसील है। जबरदस्ती बीवियों के वारिस बनने से रोका गया, बीवियों से हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया। वाशिरूहुन्न बिलमारूफ आयत 19 में। महर किंतार यानी ढेर सारा भी हो सकता है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता आयत 20 में। इन 15 खवातीन की तफसील बयान की गई जिनसे मुसलमान मर्दों का निकाह हराम है 22-23। कहाँ आती है ये भलाई आयत कुरान पाक में? चौथे पारे के बिल्कुल एंड में, ठीक है, आखिरी आयते हैं ये। फिर छठी चीज देखिए, मुसलमानों को बाहमी इस्तेहसाल। इस्तेहसाल क्या होता है? किसी का इस्तेहसाल करना क्या होता है? हक से महरूम करना। और माशी खुदकुशी से रोका गया और कबीरा गुनाहों से बचने की हिदायत की गई। किसी भी मामले के सही होने के लिए दो शर्तें बयान की गई। कोई आपसे पूछ सकता है कुरान पाक में कबीरा गुनाहों का तस्करा कहाँ है? सूरत निसा का ये नंबर नोट कर लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है। मामला बातिल ना हो, बजाते खुद हक पर मबनी हो, बाहमी रजामंदी पर मुश्तमिल हो। खुदकुशी और मुसलमानों की बाहमी मुआशी खुदकुशी को हराम ठहराया गया आयत 29 में। माली मामलात में जुल्म उद्वान की सजा दोजख बताई गई है आयत 30 में। हुकूक ज़ौजैन बताए गए, मर्द खानदान का सरबराह है और रिजाल क़वामून अला निसा। और तनाज़े की सूरत में तहकीम की हिदायत की गई। बीवियों की इसलाह के 3 तरीके बताए गए, नसीहत करना पहले दर्जे पे, मान जाए तो ठीक है नहीं तो बिस्तर अलग कर दो, और उससे भी ना हटें तो हल्की सी मार मार सकते हो। मियां बीवी के हकूक की वजाहत की गई। बिलीव में अगर ये आए 36, शादी से पहले हर मर्द और हर औरत या हर लड़के और हर लड़की को पढ़ा दी जाए, कई मसाइल शुरू में ही दब जाए। फिर हकूकुल्ला की वजाहत की गई कि इसकी खालिस इबादत शिर्क की मिलावट के बगैर की जाए। हकूकुल इबाद की वजाहत की गई कि बुखल से बचकर मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद के माली हकूक अदा किए जाए। नमाज, गुसल और तजम्मुम के मुतफरिक अहकाम बताए गए। जुनाबत की हालत में गुसल फर्ज हो जाता है और पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है, तयम्मुम का तरीका बताया गया। आप देख रहे हैं हर चीज साथ साथ है, जिंदगी के मामलात भी हैं और अल्लाह ताला के हकूक भी हैं। ये पहला पार्ट था, कहाँ तक क्या दोहराएंगे? आयत 1 से 143 में आपको मजीद इतनी मुख्तलिफ चीज़ें मिल गई, ठीक है। और इसको पढ़ते वक्त मैं अक्सर सोचती हूँ एक बात कि जो लोग कुरान को सिर्फ पढ़ते हैं, मसलन सिर्फ कुरान का एक एक लफ्ज़ पढ़ो तो सवाब होगा। हमारे यहाँ मारूफ तरीके से इसको कहते हैं कुरान ख्वानी। क्या ज़रूरत थी इतनी बहस की? अब आप मैं इस एक सूरत को पढ़ने में, इसकी बारीकियाँ देखने में कितना टाइम लगा रहे हैं? तो बेहतर नहीं था हम सारे सूरत निसा पकड़ते और सारे बैठ के एक एक दफ़ा पढ़ते? दो दफ़ा मेरा ख्याल है हम सारे मिलके यहाँ कोई 25-30 के 50 दफ़ा भी सूरत निसा पढ़ सकते थे इस एक घंटे में। कर सकते हैं कि नहीं? आप बताइए कि जो लोग इन चीज़ों को समझे बगैर सिर्फ कुरान पाक बराए तिलावत पढ़ते हैं, उनको इससे क्या मजा आएगा? नहीं आता। ये दूसरों को बताने की जरूरत है और अल्लाह ताला आसानियों का मामला कर दे।